राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारियम, यमुना तीरावनचारी, जयो राधा माधव कुंज बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, जय प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जयो राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधे, Jai Gauranitai, 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 Gauranitai. Jaya Jagannatha, Jagannatha, Baladeva Jai Subhadra. Jai 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 Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jai 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 Gurudev, 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 Jai Gurudev. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय आज हम ये श्री चैतन्य चरितामृत के एक महत्वपूर्ण श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं जो श्रील रामानंद राय ने चैतन्य महाप्रभु को बताया। अच्छा, चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय को बताया। ये स्थान वो है कोवूर, गोदावरी नदी के किनारे, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान हैं वो अपने भक्त रामानंद राय से ज्ञान ग्रहण करने के लिए आते हैं। ये श्लोक इस प्रकार से हैं। किब विप्र किब न्यासी शूद्र के नये जय कृष्ण तत्व वेता से गुरु है। किब विप्र किब न्यासी शूद्र के नये जय कृष्ण तत्ववेत्ता सेई गुरु है। किब विप्र किब न्यासी शूद्र के नये जय कृष्ण तत्ववेत्ता सेई गुरु है। और कोई नहीं बोटी।
किब क्या, विप्र एक ब्राह्मण, किबा क्या, न्यासी सन्यासी, शूद्र शूद्र, केने क्योय, नए नहीं, जेई जोई कोई भी, कृष्ण तत्ववेत्ता कृष्ण तत्व को जानने वाला, से वही गुरु आध्यात्मिक गुरु है होता है। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। कोई चाहे ब्राह्मण हो या कोई सन्यासी हो या कोई शूद्र हो, यदि वो कृष्ण के तत्व को जानता है तो वो गुरु बन सकता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा यह श्लोक कृष्ण भावनामृत आंदोलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने चैतन्य चरितामृत पर एक टीका लिखी है जिसका नाम है अमृत प्रवाह भाष्य। वो बताते हैं कि किसी को यह सोचना नहीं चाहिए कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से और सन्यासी के उच्च पद पर रहते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए शूद्र जाति में जन्मे हुए रामानंद राय से ज्ञान लेना अनुचित था या गलत था। इस बात को स्पष्ट करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय को बताया कि कृष्ण भावनामृत का ज्ञान जाति से ज्यादा महत्वपूर्ण है। वर्णाश्रम पद्धति में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये चारों के अलग अलग कर्तव्य होते हैं। वास्तव में ब्राह्मण को अन्य सभी वर्णों का गुरु माना जाता है, किंतु जहां तक कृष्ण भावनामृत का संबंध है, कोई भी व्यक्ति गुरु बनने के लिए योग्य है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत का ज्ञान जो है वह आत्मा के स्तर पर होता है। कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए केवल आत्मज्ञान से अवगत होने की जरूरत है, फिर चाहे वो ब्राह्मण हो या वो क्षत्रिय हो या वैश्य हो या शूद्र हो या सन्यासी हो या गृहस्थ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि वो इस विज्ञान को समझ जाता है तो वो फिर गुरु बनने के योग्य है। हरि भक्ति विलास में कहा गया है, यदि उपयुक्त ब्राह्मण उपलब्ध नहीं हो तो अब्राह्मण से भी दीक्षा योग्य ब्राह्मण नहीं हो तो अब्राह्मण से दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। वो उपदेश उनके लिए है जो संसारिक सामाजिक व्यवस्था पर अत्यधिक आश्रित रहते हैं और संसारिक जीवन बिताना चाहते हैं। लेकिन यदि कोई कृष्ण भावनामृत के तत्व को जानने वाले और जीवन की पूर्णता के लिए ज्ञान दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक है तो किसी भी सामाजिक स्तर के गुरु को स्वीकार कर सकता है, बशर्ते उसको कृष्ण तत्व को पूरी तरह जानता हो। भक्ति सिद्धांत ठाकुर भी कहते हैं कि यदि कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यासी है, यदि वो कृष्ण विज्ञान को जानता है तो वह वर्तम प्रदर्शक गुरु, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु बन सकता है। आध्यात्मिक जीवन के विषय में सर्वप्रथम जानकारी देने को वर्तम प्रदर्शक गुरु बोलते हैं, जो हमें पहले रास्ता दिखाता है, को वर्तम प्रदर्शक बोलते हैं या पथ प्रदर्शक गुरु। जो गुरु शास्त्र के अनुसार दीक्षा देता है उसको दीक्षा गुरु कहते हैं, और जो ऊपर भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा देता है उसको शिक्षा गुरु कहते हैं। वास्तव में गुरु की योग्यता उसके कृष्ण तत्व के ज्ञान पर आधारित है, फिर चाहे ब्राह्मण हो या क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। चैतन्य महाप्रभु द्वारा यह आदेश शास्त्रों के विरुद्ध नहीं है। पद्म पुराण में कहा गया, न शूद्र भगवत भक्त भगवत भक्तस्य अपि भागवत उत्तम सर्ववर्णेषु ते शूद्र ये न भक्त जनार्दन। जो कृष्ण विषय में भक्ति में आगे बढ़ा है वो शूद्र कुल में जन्म होने पर भी वो शूद्र नहीं है, किंतु एक ब्राह्मण है जो षट कर्म जानता है, पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह वैदिक स्तोत्र भी जानता है। अगर वो वैष्णव नहीं है तो वो गुरु नहीं बन सकता। कोई चंडाल परिवार में भी जन्मा हो, अगर वो कृष्ण भक्ति के विज्ञान को जानता है तो गुरु बनने के लायक है। ये बहुत लंबा तात्पर्य है, इसलिए हम यहां तक पढ़ के फिर अगली बार इस पर ज्यादा आगे का पढ़ेंगे। ओम अज्ञान्तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमा ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पथितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्रीअद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामो हरे राम राम रामो हरे। जोर से बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम रामो हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण। इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के इस रविवार के कार्यक्रम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। ये देखकर बहुत उत्साह बढ़ता है कि कैसे यहां पर सब भक्तों को भगवान की कथा सुनने में रुचि है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि जिसको कृष्ण कथा में रुचि है से ही भाग्यवान, बहुत भाग्यशाली। हम समझते हैं भाग्य मतलब किसी के पास 10 करोड़ का बैंक बैलेंस है। किसी के पास है? हाथ ऊपर मत करना, इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे। ये भाग्य माना जाता है, मेरे पास 10 करोड़ बैलेंस है, या मुझे कोई अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया है जहां पर पढ़ाई करके मैं जन्म मृत्यु में फंसा रह सकता हूँ। किसी का भाग्य माना जाता है कि वो अमेरिका या जर्मनी या लंदन या कनाडा कोई विदेश में गए हैं और वहां की पवित्र धूलि को स्पर्श किया है। ये सब भी अच्छा है, ये मेटीरियल भाग्य है, लेकिन रियल भाग्य है कि भगवान के भक्तों का संग मिलना। तांदेर चरण से ही भक्त सने वास, जन्म में होए ए अभिलाष। नरोत्तम दास ठाकुर जो हमारे परंपरा के एक प्रमुख आचार्य हैं, बोलते हैं भक्त अभिलाषा क्या करनी चाहिए? तांदेर चरण से ही, कि मैं भक्तों के संगति में रहूं, उनके भक्तों के संग में बस हरि कथा और हरि कीर्तन करते। जब भगवान किसी पर बहुत प्रसन्न होते हैं तो उनको भक्तों का संग प्रदान करते। और ये रविवार का जो कार्यक्रम है ये एक अवसर है जिससे हम सब वैष्णव के साथ मिलकर भगवान की कथा सुन सके, मिलकर कीर्तन कर सके, स्पेशली गुरु पूजा में, और मिलकर प्रसाद ले सके। ये बहुत आसान है लास्ट बार। तो ये कृष्ण भावनामृत का आधार है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। जनरली अधिकतर लोग रविवार सुबह का समय अन्य क्रियाओं में बिताते हैं। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो सारे विद्यार्थी रविवार के दिन एकाग्र मन से टीवी का दर्शन करते थे। व्यवसायात्मिक बुद्धि एक ही है करुणा। कोई कॉलेज लाइब्रेरी नहीं जाता, कोई कहीं नहीं जाता, और निश्चिंत होकर टीवी के अज्ञान में अपने आप को ढक देते। लेकिन यहाँ पर इस्कॉन में भक्तों की परंपरा है कि जब भी छुट्टी होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करते या कीर्तन करते या पुस्तक वितरण करते हैं। स्पेशली इस महीने में कई भक्त, हम सभी भक्त प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रभुपाद जी की कृपा भक्तों को वितरित की जाए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया है कि जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। आप जिससे भी मिलते हो उनको कृष्ण भक्ति का ज्ञान दो। इसका मतलब या तो कृष्ण के बारे में बोलो या कृष्ण की पुस्तक वितरण करना, वो भी कृष्ण उपदेश। तो मैं आज का जो प्रवचन है वो पिछले प्रवचन जो 16 नवंबर को मैंने दिया था उसे कनेक्ट कर रहा हूँ, जिसमें हमने ये चर्चा की थी कि कैसे चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की ओर प्रस्थान करते हैं। चैतन्य महाप्रभु भगवान हैं लेकिन एक भक्त के रूप में आए हैं। भगवान अपनी कृपा को बांटने के लिए स्वयं भक्त के रूप में अवतरित होते हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि भगवान के नाम जप में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है भक्तों का संग मिलना, भक्तों के संगति में नाम जप करना, और ऐसे स्थान में करना जहां पर कोई ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं हो, मन विचलित नहीं हो। और स्वयं चैतन्य महाप्रभु हालांकि भगवान है, वो भक्त के रूप में लीला कर रहे हैं जिससे कि वो कृष्ण नाम सबको वितरित कर सके। भक्ति विनोद ठाकुर ने एक बहुत सुंदर भजन लिखा है, जीव जागो गौर चंद्र बोले, कि हे जीव जागो, भगवान गौरंग महाप्रभु बोल रहे हैं उठो उठो वेकअप। मैं भी बोल रहा हूँ उठो उठो, क्योंकि अभी ठंडी हल्की हल्की शुरू हुई है और मंगल आरती जपा वगैरह करके सब लोग जब क्लास में बैठते हैं तो कई बार निद्रा देवी की कृपा मिल जाती है, भक्तिनो ठाकुर बोलते हैं जागो जागो वेक अप कोत निद्रा जाओ माया पिशा चीर कोले यू आर स्लीपिंग इन द लैप ऑफ द माया विच आप माया के गोद में सोए उठो। और उसी भजन के लास्ट पंक्ति में वो बहुत सुंदर वाक्य कहते हैं एने छे औषधि माया नाशी बारो लागी हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्हें मागी। आई ब्रॉट दिस मेडिसिन मैं एक दवाई लेकर आया हूं और दवाई है ये हरे कृष्ण महामंत्र। लेकिन इस दवाई को लेने का तरीका वो बताते हैं भक्ति विनोद प्रभु चरणे पोड़िया। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं भगवान के चरणों में गिर के सही हरि नाम मंत्र लोई लो मागी। मैं हरि नाम महामंत्र लेने के लिए आपसे निवेदन करता हूं। भगवान के चरणों में गिर के हम भीख मांगते हैं तभी हरि नाम ले सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु प्रचारक भी हैं और कृष्ण प्रेम के रसिक भक्त भी हैं। वह अपन ही आचार करी प्रभु शिकाई है। स्वयं भगवान आचरण भी करते हैं और फिर प्रचार भी करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो कई बार हम आचरण नहीं करते और प्रचार करते हैं तो ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे एक छोटे बच्चे को गुड़ खाने की बहुत आदत थी। गुड़ अच्छा है, गुड़ इज गुड, लेकिन थोड़ी मात्रा में। इसको बहुत आदत थी 250 ग्राम गुड़ खा लेता। उसके माता पिता को चिंता हो गई। वे एक साधु के पास गए, बोले हमारा बेटा बहुत गुड़ खाता है, क्या किया जाए। बोले ठीक है, 2 महीने बाद उसको यहां लेकर आना। 2 महीने बाद उसको लेकर आए तो साधु महाराज बोले बेटे देखो गुड़ ज्यादा नहीं खाना चाहिए, बहुत थोड़ा सा। तो उसने बहुत सीरियसली स्वीकार किया और उस दिन से गुड़ बिल्कुल बंद ही कर दिया। और 1 महीने बाद उसके माता पिता आए, बोले गुरुजी आपने तो बहुत अच्छा मंत्र दे दिया, हमारा बेटा बिल्कुल अब गुड़ खाता ही नहीं है, बहुत थोड़ा खाता है। लेकिन फिर आपने पहले दिन क्यों नहीं बता दिया उसको। आप पहले दिन बोल सकते थे कि गुड़ मत खाओ, 2 महीने वेट क्यों किए। तो गुरुजी ने सिर नीचे करके कहा पहले मैं भी बहुत गुड़ खाता था, तो जब मैं स्वयं गुड़ खाता हूं तो कैसे किसको मना कर सकता। जैसे चैतन्य महाप्रभु हैं पहले एग्जाम्पल्स दिखाते हैं, उनका आचरण परफेक्ट है। बहुत स्ट्रिक्ट सन्यासी, बहुत स्ट्रिक्ट गृहस्थ जो भी आश्रम में थे, और फिर वो वितरण करते। चैतन्य महाप्रभु 24 वर्ष तक रहे नवद्वीप में, फिर उन्होंने सन्यास लिया। सन्यास लेने के बाद वो वृंदावन जाना चाहते थे। उनकी माता शची माता ने बोला कि आप वृंदावन जाओगे तो हमें कोई समाचार नहीं मिलेगा। उस जमाने में कोई ईमेल सिस्टम नहीं था, नहीं कोई वहां पे व्हाट्सएप था, तो कैसे पता चलेगा महाप्रभु कहाँ है। एक ही तरीका है, अगर कोई चल कर आता वृंदावन से, तो इसलिए शची माता ने बोला वृंदावन मत जाओ, लेकिन वही कृष्ण जो वृंदावन में रहते हैं वो जगन्नाथपुरी में भी है। जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ, इसलिए ज्यादा अच्छा है कि आप जगन्नाथपुरी में रहो। तो वो जगन्नाथपुरी में रहने लगे और जगन्नाथपुरी में कुछ महीने रहने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने निश्चय किया कि मैं दक्षिण भारत जाऊंगा। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत किस लिए गए, क्या कारण है, किसी को मालूम है ये कारण? What was the reason? Yes. महाप्रभु किस लिए गए साउथ इंडिया? Nobody knows. प्रचार के लिए, yes. प्रचार के लिए। हालांकि बाहर से महाप्रभु ने बताया कि मैं अपने बड़े भाई विश्वरूप की खोज में जा रहा हूं, लेकिन अंतरंग कारण था वो प्रचार करना चाहते थे, बद्ध जीवों का उद्धार करना चाहते। तो महाप्रभु निकल पड़े। और पिछले महीने जब प्रवचन मैंने शुरुआत किया था कि महाप्रभु आए कुर्म क्षेत्र में, वहां पर एक ब्राह्मण थे जिनके घर में भगवान ने प्रसाद लिया, और वो ब्राह्मण भी सब कुछ छोड़कर महाप्रभु की तरह सन्यासी जीवन बिताना चाहते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु उनको मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, आप घर में रहो लेकिन कृष्ण भक्ति का प्रचार करो। जा रे देखा तारे कह कृष्ण उपदेश। महाप्रभु ये बता रहे हैं कि कलयुग में विशेष करके अचानक सन्यास लेना ठीक नहीं है। ज्यादा अच्छा है कि जिस आश्रम में हम हैं उसी में स्थित रहकर कृष्ण भक्ति में प्रगति करें। कृष्ण नाम जो है वो भक्ति में प्रगति का आधार है, और किसी भी वर्ण और आश्रम में रहकर हम ज्यादा से ज्यादा कृष्ण नाम लेते हैं तो हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। जैसे दवाई वही है, कभी कभी कोई पेशेंट होते हैं, दवाई लेते हैं, वो घर में बह के भी ले सकते हैं, कोई अस्पताल में लेते हैं, कभी कोई ट्रेन में है तो वहां भी ले सकता है। भगवान के नाम दवाई की तरह, कुछ चीजें ज्यादा अनुकूल है, जैसे भक्तों के संग में रहकर जप करना ज्यादा अनुकूल है, लेकिन अंततः कृष्ण भक्ति है अहितु की अप्रतिहता। हमारे इस्कॉन के एक सीनियर प्रोपर डिसाइपल हैं श्री चंद्रमौली स्वामी महाराज, वो जेल में प्रिजन में प्रचार कर रहे हैं, उनकी स्पेशलिटी प्रीचिंग है। वो इस बार वृंदावन में बता रहे थे अपने प्रचार के बारे में, कैसे जेल के कैदी भी जो है वो कृष्ण कथा सुनने के लिए उत्सुक होते हैं। मेरा भी एक बार सौभाग्य था, आप में से कोई कभी गए हैं जेल में? नहीं होगा भी तो भी हाथ ऊपर करने में शर्म आएगी। मैं एक बार कोल्हापुर में जेल में गया था लेक्चर देने के लिए और वहां पर जो भक्त ने कार्यक्रम अरेंज किया था वो 6 बजे का समय था। मुझे लगा कि 6 मतलब इस्कॉन का 6 मतलब 6:30, 7 जल्दी आए तो फिर कुछ और लगता, अजीब लगता है। मैं 6:15 पे पहुंचा तो देखा सब लोग पहले से ही बैठे, और पता चला वो 5:30 बजे ही आ गए थे, क्योंकि जेल के कैदी हैं उनको बहुत उत्सुकता थी, उनको पता था हम दुख में हैं, ये दुनिया एक ये वो जेल में रह रहे हैं और दुनिया एक जेल है, वो जेल के जेल में रह रहे हैं, ऐसी ईगरनेस थी। तो जेल में रहकर भी कितने भक्त हैं जो हरि नाम ले रहे हैं, सीरियसली भागवतम पढ़ रहे हैं। इसके पहले रशिया में जब प्रचार मना था, जब पुस्तक वितरण मना था, तो लोग छिप छिप कर पुस्तक पढ़ते थे। कभी कभी उल्टा होता है, लोग छिप कर क्लास से उठ के चले जाते हैं, तो यहाँ पर ये कॉन्ट्रास्ट है ना। रशिया में लोग एक एक पुस्तक को 10-10 भक्त पढ़ते थे, क्योंकि पुस्तक वितरण मना था। तो भक्ति अहेतु की अप्रतिहता, इसलिए महाप्रभु बोले आपको घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप बस कृष्ण भक्ति का उपदेश करो, जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण पदे, अमार आज्ञा गुरु है यह तारे देश, आप हरि भक्ति का प्रचार करो। और फिर महाप्रभु वहां से निकल गए, और अचानक और एक भक्त आए महाप्रभु से मिलने के लिए कुर्म क्षेत्र में, एक और भक्त आए। पहले जो भक्त थे उनका नाम था कुर्म, ब्राह्मण का नाम कुर्म था, जगह का नाम कुर्म था, और डीटीस का नाम भी कुर्म था, kurma@kurma.com उनका ईमेल आईडी था। इसके बाद एक और ब्राह्मण आया, इसका नाम था वासुदेव, यस वासुदेव, महाप्रभु महाप्रभु कहाँ है, महाप्रभु कहाँ है, और किसी ने बताया वो तो चले गए। तो उनको ऐसा लगा जैसे सिर के ऊपर वज्र पड़ गया, बहुत दुखी हो गए और विलाप करने लगे, रोने लगे भगवान की विरह में। जब कोई भक्त भगवान के लिए रोता है, भगवान के लिए विलाप करता है, तो उसको भगवान की उपस्थिति का अनुभव होता है। कभी कभी भगवान भक्तों को विरह के सागर में डालते हैं, जिससे उनका प्रेम और बढ़ जाए। भगवान श्याम सुंदर गोपीनाथ ब्रजधाम छोड़कर मथुरा चले गए और फिर द्वारका चले गए, तो गोपियां हमेशा विरह में भगवान को याद करते। और हमारे गोस्वामी भी, श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जो ब्रज में रहते, वो इसी भाव में रहते थे। हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद शुनो कुता, कहाँ पर है कृष्ण, गोवर्धन, यमुना, राधा कुंड, श्याम कुंड, सब जगह ढूंढते। तो ये ब्राह्मण जब विरह में रो रहे थे तो भगवान लौट कर आ गए। पूरे महाप्रभु की लीला में एक ही घटना है कि जब भगवान वापस लौट कर आए, सिर्फ एक बार भगवान ने यू टर्न लिया, और वो इसी एक भक्त के लिए। भगवान एक एक भक्त का इतना ख्याल रखते हैं, भगवान हर एक के साथ प्रेम का व्यवहार करते हैं। अगर मैं भगवान के प्रति समर्पित हो रहा हूं तो मुझे उस प्रेम का अनुभव ज्यादा होता है। अगर मैं पूरा नहीं हो रहा, जितना मैं समर्पण करता हूं उतना ही भगवान की कृपा का अनुभव होता है। तो ये ब्राह्मण विलाप कर रहे थे और श्री चैतन्य महाप्रभु लौट कर आए। ये ब्राह्मण के शरीर में एक बहुत ही विचित्र बीमारी थी, कुष्ठ रोग, जिसके कारण पूरा शरीर बिल्कुल गल गया था, उसमें कीड़े भरे हुए थे। कितना दर्ददायक लगेगा, नहीं कभी कोई कोई फल अगर खराब हो जाता, उसमें कीड़े लग जाते, कितना खराब लगता है। आप सोचिए कि आपके स्वयं के शरीर में ऐसा हो, तो कौन उस व्यक्ति के पास बैठना चाहेगा, सब से दूर भागना चाहे। लेकिन वो इतने बड़े महापुरुष थे, उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। अगर कोई कीड़ा गिर जाता तो कीड़े को उठाकर वापस रख देते और सोचते ये शरीर तो मेरा नहीं है, ईश्वरवास्यम इदम सर्वम, सब कुछ भगवान का है, इसलिए वो कीड़े को भी वापस रखते, शरीर है भगवान का है, मेरा भी अधिकार है कीड़े का भी अधिकार। कभी कभी ट्रेन में आरएसी सीट होता है ना, आधा आधा तो दो जन शेयर करके जाए। ही वॉज सींग परमात्मा इन द हार्ट ऑफ दैट वर्म, ये कीड़े में भी भगवान, इसका मुझे सम्मान करना। आज पूरे देश में या पूरे विश्व में हम देखते हैं कई झगड़े होते हैं जाति के नाम पे या प्रदेश के नाम पर या पॉलिटिकल पार्टीज के नाम पर, कई बार भक्तों में भी हो जाता है इस तरह से भेद, ग्रुपिज्म हो जाता है अलग अलग कारण से। लेकिन अगर हम जानेंगे कि हम सब कृष्ण के दास हैं और सब कुछ कृष्ण का है, तो हमारे अंदर भावना आएगी कि हम एक कुटुंब के हैं, वासुदेव कुटुंब, इसके केंद्र कृष्ण। वासुदेव के अंदर ये रियलाइजेशन था, साक्षात्कार था कि सबके हृदय में भगवान। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि भगवान का नाम लेने के लिए ये गुण बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण कीर्तने यदि मानस तोहार, परम यतन ताहे लाभे अधिकार। बोलते हैं अगर आप कृष्ण का कीर्तन हमेशा करना चाहते हो तो कैसे हो सकता है? कृष्ण अधिष्ठाने सर्वे जीवे जानी, नोइंग दैट कृष्ण इज डिसाइडिंग इन द हार्ट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। सबके हृदय में भगवान श्याम सुंदर निवास करते हैं और सबको आदर देना, ये अमानी न मान देना कैसे संभव है कि सबके हृदय में भगवान। अगर मैं किसी का अपमान कर रहा हूं तो उसके हृदय में भगवान को पीड़ा दे रहा हूं, किसी से अच्छा व्यवहार कर रहा हूं तो उसके हृदय में भगवान प्रसन्न हो। तो वासुदेव से हम सीख सकते हैं कि हम कैसे सबको सहन करना, सबसे अगर प्रेम नहीं कर सकते कम से कम सहन करना सीख। ये सहयोग का भाव तभी संभव है जब सहनशीलता होती। तो महाप्रभु इतने प्रसन्न हुए इसकी भावना को देखकर कि वासुदेव को गले लगाने गए। वासुदेव सोच रहे थे मैं योग्य नहीं हूं, लेकिन भगवान ने प्रेम से आलिंगन की। दया मूर्ति प्रेम सागर श्री गौरहरि के दिव्य अंगों का स्पर्श करते ही वासुदेव की बीमारी दूर हो गई, बस बिल्कुल चंगे हो गए, अच्छे बन गए, का शरीर का कलर उनकी तरह हो गया, गोल्डन कॉम्प्लेक्शन, और सारे कीड़े चले गए। शायद वो कीड़े भगवत धाम चले गए होंगे, उनको एक फ्री टिकट मिल गया, स्पॉन्सर्ड बाय वासुदेव। सब एक भक्त के कॉन्टेक्ट में आने से, तो कीड़े की योनि तो बहुत पाप योनि है, तमोगुण की योनि, लेकिन वो डायरेक्ट भगवान के धाम की प्राप्ति होती भगवान के संपर्क में। एक वैष्णव के संबंधित जो भी आता है चाहे किसी भी तरीके से आए उसको लाभ ही लाभ है। देखते हैं नलक कुबेर मणिग्रीव, ये दो बड़े देवता हैं, वो इंद्र के सॉरी कुबेर के पुत्र हैं और कुबेर ट्रेजरर है, खजांची है, लेकिन उनके अंदर अभिमान था, बिना कपड़े के स्नान कर रहे थे। कम से कम नारद मुनि को देखकर तो उन्होंने कपड़े पहन लेने चाहिए थे, लेकिन नारद मुनि को देखकर भी उनको लज्जा नहीं आई। नारद मुनि ने दयापूर्वक उनको शाप दिया कि आप पेड़ बन जाओ, ये बहुत कठिन योनि है, पेड़ योनि जैसे खड़े रहना। मुझे याद है हमारे स्कूल में जब कोई विद्यार्थी कोई गलत काम करता है तो उसको बेंच पे खड़ा रखता है, होता था आपको भी, आपको बाल्य लीला याद है आपके, सबके साथ होता था। लेकिन 10 मिनट ठीक है, 20 मिनट आधा घंटा खड़े रहना, यस, और सब देख रहे हैं, सब मजाक कर रहे हैं, बहुत पेनफुल होता है। अब पेड़ योनि में तो कम से कम आप खड़े भी हैं तो गर्दन तो हिला सकते हैं आप, लेकिन ये पेड़ तो एकदम कोई बहुत ही, इंद्रियों की शक्ति बहुत सीमित है, लेकिन पेड़ योनि में रहकर एक सौभाग्य था। गोकुल में पेड़ ब्रज धाम में नंद बाबा के घर के पास, और फिर नारद मुनि ने उनको वरदान भी दिया कि आप पेड़ तो बनोगे लेकिन गोकुल में, और जब कृष्ण आएंगे तो आपका उद्धार हो जाए। देखो उन्होंने अपराध भी किया एक वैष्णव का, लेकिन वैष्णव कितने दयालु हैं कि वैष्णव गुस्से भी हुए, शाप भी दिया और शाप भी वरदान हो गया, क्योंकि कृष्ण भगवान स्वयं आए और खेलते खेलते उखल उखल के स्पर्श से उनका उद्धार कर दिया। यानी उनके उनके उनका डेस्टिनेशन था नीचे की तरफ जाना, भगवान ने उनको वापस ऊपर भेज दिया। तो एक वैष्णव का शाप भी वरदान हो जाता है और एक संसारी व्यक्ति का वरदान भी शाप हो जाता है। संसारी व्यक्ति वरदान क्या देंगे, आपको खूब धन मिले, आपका अच्छा परिवार मिले, आप इंद्र तृप्ति करो और खुशी पूर्वक नरक में जाओ, क्योंकि आप इंद्र तृप्ति ज्यादा करोगे बिना नियम के तो नरक में जाओ। तो किसी भी तरीके से वैष्णव के संग में रहना, नरोत्तम दास ठाकुर के जीवन में तो एक व्यक्ति थे चंद्र राय, इनके शरीर में एक भूत आ गया था। आप लोग भूत जानते हैं ना, भूत एक योनि है कि शरीर नहीं है, आत्मा है, तो बहुत पेनफुल योनि है। और न केवल भूत को तकलीफ होती है, जिसके अंदर आते हैं उसको भी तकलीफ होती है। भूत मतलब उसके पास कुछ भी नहीं है तो वो दूसरों के शरीर में रहकर खाना चाहता है, इंद्र तृप्ति करना है। तो चंद्र राय इतने पापी थे, उनके शरीर में भूत आ गया। बहुत सारे तरीके से प्रयास किया ओझा से, लेकिन भूत जा नहीं रहता। लेकिन वो भूत बोलने लगा, भूत बोलने लगा कि आप सब कुछ नहीं कर सकते, आपके इसको आपके आपके सर्कल में एक भक्त है नरोत्तम दास ठाकुर, अगर वो आते हैं अपने चरण की धूल रखते हैं सिर पे तो मेरे को भी मिल जाए। भूत मतलब शेयर डेटा, जो जो मिलेगा वही स्वीकार करना। नरोत्तम दास ठाकुर से निवेदन किया, नरोत्तम दास ठाकुर ने अपने चरण की धूल दी और उसका उद्धार हो गया। यहाँ पे कीड़ों का भी उद्धार हो गया। श्रीवास ठाकुर के घर में, श्रीवास ठाकुर के एक मुस्लिम टेलर थे, मुसलमान टेलर जो ऑब्वियसली भक्ति नहीं करते थे, लेकिन क्योंकि वो श्रीवास के लिए सिलाई कर रहे थे, कपड़े बना रहे थे, तो महाप्रभु ने उनको भी अपना दर्शन दिया, उन पर भी कृपा की। श्रीवास ठाकुर से वो कहने लगे कि आपके घर के सभी लोग मुझे प्रिय हैं, न केवल आप, आपके परिवार, आपके भाई के भाई के परिवार, आपके घर में पास पास जो जानवर हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, उनको भी कृष्ण प्रेम। कालियानाग देखिए, कालियानाग भक्त नहीं था, उसने कोई प्रोग्राम अटेंड नहीं किया था। अभी यहाँ बाहर कालियानाग है, लेकिन वो तो उस समय कालियानाग था, वो बहुत भयानक असुरी योनि थे, लेकिन क्योंकि उनके पत्नी भक्त थे, उनके पत्नी के भक्ति से उनका भी उद्धार हो। तो महाप्रभु ने उनका उद्धार कर दिया और फिर महाप्रभु दक्षिण भारत में और आगे सिंहाचलम आए, वहां पर उन्होंने झियाड़ नरसिम्हा का दर्शन किया। झियाड़ नरसिंह मंदिर में लास्ट टाइम बताया था, आधा वराह देव और आधा नरसिंह देव है, और वहां पर महाप्रभु ये श्लोक गा रहे थे, जय नरसिम्हा श्री नरसिम्हा, जय जय श्री नरसिम्हा प्रहलादेश जय पद्म मुख पद्म। उसके बाद फिर महाप्रभु वहां पर आए जहां पर आज हम पढ़ रहे हैं रामानंद राय के साथ वार्तालाप। हमारे पास करीब आधा घंटे का समय है, मैं जस्ट शुरुआत करूंगा, उसके बाद फिर प्रसाद के बाद सुबह 10 बजे से नीचे हम कंटिन्यू करेंगे। ये विषय जो आज मैं लिया है बन्यासी, ये रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के बीच में वार्तालाप, ये बहुत लंबा विषय है, तो हम उसको संक्षिप्त में बताने का प्रयास करेंगे। एक्चुअली ये विषय मेरे जैसे व्यक्ति को बोलने की कोई योग्यता नहीं है, और आप में से बहुत कम है जो समझने के लिए योग्य है, लेकिन फिर भी हम पढ़ रहे हैं क्योंकि प्रभुपाद जी ने अनुवाद किया है और उनकी आज्ञा से, उनके आशीर्वाद से जो विषय है उसका एक झलक भी समझ में आ जाए 0.01% भी, तो हमारा भगवत धाम जाना निश्चित है। ये वार्तालाप है चैतन्य महाप्रभु यानी राधा और कृष्ण एक स्वरूप में, और रामानंद राय हैं विशाखा सखी। जैसे मायापुर में देखते हैं कि राधा माधव के साथ अष्ट सखी, ललिता विशाखा सुदेवी चंपकलता इंदुलेखा, ये अष्ट सखी, उसमें से एक विशाखा सखी, वही विशाखा सखी रामानंद राय के रूप में। और ऐसा भी बताते हैं कि रामानंद राय अर्जुन के भी अवतार है। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता बोली, शायद पिछले सप्ताह था ना गीता जयंती, आपने सुना होगा यहां पर प्रवचन में गीता कैसे प्रकट हुई। भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हम सबको उपदेश दिया। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जैसे अगर कोई सास अपने बहू को कुछ सिखाना चाहती है, तो बहू अभी नए घर में आए हैं, अगर कुछ कठोर बोल दिया तो बुरा लग जाएगा, शायद घर छोड़ के मैके चले जाएंगे, इसलिए वो बहू को डांटते नहीं है, वो सिखाते हैं बेटी के द्वारा। जैसे भगवान कृष्ण हम सबको उपदेश कर रहे हैं अर्जुन के द्वारा, अब भगवत गीता हम देखते हैं अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं, किम ब्रह्म किम अध्यात्म, भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, कृष्ण मेरे को पता नहीं क्या अच्छा है। शिष्यस्ते हम शादी माम तम प्रपन्नम, मैं शिष्य हूं आपकी शरण में आया हूं, आप मुझे दिव्य ज्ञान का उपदेश करिए। और फिर भगवान कृष्ण ज्ञान देते, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से। जब तक अर्जुन सोच रहे हैं कि मुझे पता है, तब तक भगवान कृष्ण शांत रहते। जब अर्जुन समर्पण करते हैं तब दिव्य ज्ञान की प्रक्रिया शुरू होती। लेकिन यहां पर रोल उल्टा है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं यहां पर कृष्ण प्रश्न पूछ रहे हैं और अर्जुन जवाब दे रहे हैं। भगवद गीता इन रिवर्स मोड, भगवान कृष्ण अर्जुन से प्रश्न पूछ रहे हैं, ऐसा क्यों? और वो भी रामानंद राय जो ब्राह्मण भी नहीं है, क्षत्रिय भी नहीं है, वैश्य भी नहीं है, शूद्र परिवार से, क्लासिफिकेशन में फोर्थ कैटेगरी, और आश्रम देखे तो संन्यास आश्रम को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन रामानंद राय जो है वह सन्यासी भी नहीं है और गृहस्थ ब्रह्मचारी भी नहीं है, बल्कि गृहस्थ है, परिवार जीवन में इतने उनके जिम्मेदारियां हैं और उनके पास इतना धन है। जनरली से भक्ति के लिए धन और वैभव ये प्रतिकूल माना जाता है। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया परत चेतसाम, भगवान बोलते हैं जो भोग और ऐश्वर्य में लगा है उसके लिए भक्ति करना मुश्किल होता है। महारानी कुंती भी यही बात बहता था, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भीर एदमान मदपुमान, जिसको ऊंचे परिवार में जन्म हुआ, बहुत सुंदर शरीर है, ये बहुत बहुत पढ़े लिखे हैं, तो उनके लिए भक्ति करना मुश्किल होता है। जैसे मान लो किसी के पास, जैसे बता रहा था 10 करोड़ों रुपए हैं और बहुत सारे सर्वेंट्स हैं और बहुत सारे कार हैं और इतना मान सम्मान हो रहा है, वो कैसे आके भगवान के सामने बोलता है भगवान मेरा कुछ भी नहीं है? जब बोले कुछ नहीं है, 4 लोग देख रहे हैं, क्या नहीं है, कैसे बोल सकता है भगवान आई एम हेल्पलेस? है कुछ उदाहरण है, अम्बरीश महाराज हैं, भक्ति विनोद ठाकुर हैं, जिनके पास भौतिक चीजें भी थी और फिर भी वो निष्किंचन थे। लेकिन ये मुश्किल होता है, जब किसी के पास कुछ है ही नहीं तो बस भगवान को समर्पण होना आसान होता। इसीलिए भक्त को भौतिक सुखों के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए, जो भी मेरे भक्ति के लिए अच्छा है वो ही दो। अगर करोड़पति बनने से भक्ति बनती है तो मुझे करोड़पति बनाओ, और अरबपति बनने से भक्ति बढ़ती है तो अरबपति बनाओ, और जीरोपति बनने से भक्ति बढ़ती है तो सब कुछ छीन लो जो आपको अच्छा लगे। कृष्ण नोस बेस्ट व्हाट इज बेस्ट फॉर मी, मैं कैसे जानूंगा क्या अच्छा? जिस स्थिति में भगवान ने मैं रखा है वही सर्वोत्तम है, क्योंकि कृष्ण की बुद्धि, कृष्ण की समझ हम सबसे ज्यादा है। रामानंद राय उदाहरण है, इतने वैभव में रह रहे हैं, हजारों सेवक हैं उनके, जब वो प्रवेश भी करते हैं गोदावरी किनारे तो लोग बैंड बजा रहे होते हैं, जैसे पहले जमाने में होता था कि कोई राजा आता है, डुम 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 डुम, महाराज आ रहे हैं, इतने वैभव के साथ। लेकिन रामानंद राय जब चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं तो उनके चरणों में गिर के भीख मांगते हैं, प्रभु मुझे कृष्ण मुझे मुझे आप मुझे शुद्ध बनाओ। सर्व भट्टाचार्य ने पुरी में चैतन्य महाप्रभु को बोला था, दक्षिण भारत में जाओगे तो रामानंद राय से जरूर मिलना। हालांकि वो विषयी लगते हैं, ऐसा लगता है बहुत मेटेरियलिस्टिक व्यक्ति है, संसार में फंसे हुए, लेकिन उनको कृष्ण कथा में बहुत रुचि। श्री चैतन्य महाप्रभु जब गोदावरी के किनारे पहुंचते हैं, नदी को पार करने के बाद एक अच्छी जगह देखकर स्नान करते हैं, जहां पर ये वार्तालाप हुआ वो जगह का नाम है कोबूर, जो गोदावरी नदी के किनारे है। श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने वहां पर एक गौड़ीय मठ की स्थापना की है और वहां पर चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों को अंकित किया है, फुटप्रिंट्स भगवान की स्थापना की, इसके स्मृति में कि यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु आए थे। बहुत ही पवित्र स्थान, आप में से कोई भक्त गए हैं कभी कुबूर देखे आपने? राजमुंडरी के पास में ही है, अगर आप यहाँ से ट्रेन से जाते हैं कोणार्क एक्सप्रेस से तो विजयवाड़ा के बाद राजमुंडरी आता है नेक्स्ट स्टॉप, राजमुंडरी से 8 किलोमीटर पहले कुबूर है। कुबूर और राजमुंडरी के बीच में गोदावरी नदी है, करीब 8 किलोमीटर लंबा रेलवे ब्रिज, मेरे ख्याल से पूरे भारतवर्ष का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज है, गोदावरी किनारे, और वहां पर महाप्रभु ने स्नान किया, स्नान करके वेट कर रहे थे, को बताया गया था कि रामानंद राय यहां पर आते, अचानक देखा उन्होंने बहुत बैंड बज रहे हैं, रामानंद राय प्रवेश कर रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु को लगा शायद ही रामानंद राय हैं, और जब रामानंद राय देखने लगे भगवान को, ये कौन है? सूर्य शत सम कांति, उनके शरीर से ऐसा प्रकाश निकल रहा है कि 100 सूर्य का एक साथ प्रकाश है। अरुण वसन, भगवे कपड़े, कमल लोचन, कमल के समान सुंदर आंखें, और सुबलित प्रकांड देह। भगवान का शरीर बहुत अच्छे, अच्छी रचना, सुगठित शरीर। रामानंद राय सन्यासी को देखकर उनके प्रति आकर्षित होने लगे, और चैतन्य महाप्रभु भी जानते थे रामानंद राय हैं। और रामानंद राय उनके पास में गए, प्रणाम किया, और महाप्रभु उनको गले लगाया। ये राधा कृष्ण का विशाखा सखी के साथ मिलन है। तो महाप्रभु ने पूछा, रामानंद, आर यू रामानंद राय? तो रामानंद राय ने क्या जवाब दिया? अभी साधारण व्यक्ति अगर पोस्ट पर है तो बोलते, आप पूछ रहे मैं कौन हूं? आप देखा नहीं होर्डिंग लगे हैं मेरे मैं इतना पॉपुलर हूं, देखो ट्विटर में कितने मेरे पीछे लग रहे हैं लोग। रामानंद राय ने बहुत नम्र जवाब दिया, रामानंद कहे आमी शूद्र अधम मंद, आई एम अ लोली सर्वेंट, मैं बहुत पतित हूं, मैं आपका दास हूं। ये वैष्णव का पहला गुण है, जब भी अपने बारे में कुछ कहता है तो बहुत ही निम्न, अपने आप को बहुत तुच्छ मानते। उत्तम है अधम कोरी माने, ये वैष्णव है, बहुत हाई लेवल पर होकर भी अपने आप को सोचता है मैं बिल्कुल अनक्वालिफाइड, आई एम जस्ट अ बेगर। हमारे फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका में गए तो अपनी कविता लिखी, और कविता के एंड में लिखते हैं यू आर इनसिग्निफिकेंट बेगर, एक भिक्षुक। जब भगवान के चरणों में भिखारी बनता है वो पूरी दुनिया के लिए दाता बन जाता है। भगवान से भीख मांगकर पूरी दुनिया को कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकते हैं हरि नाम के द्वारा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। जब दोनों एक दूसरे को गले मिलने लगे और दोनों भूमि पर गिर पड़े, अचेतन हो गए और कुछ देर तक उठे ही नहीं, और थोड़ी देर बाद प्रेम के लक्षण प्रकट होने लगे। मैं कहानी पढ़ रहा था हमारी परंपरा में, और एक आचार्य हुए हैं भक्ति विनोद ठाकुर के समय के, जिनका नाम है जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, और वो नवद्वीप रहते, कभी कभी वृंदावन जाते, वृंदावन से नवद्वीप लौट कर आए तो अपने दूसरे वैष्णव महात्मा से गले मिले, 11 बजे गले मिले और 2 बजे तक गले मिलते रहे 3 घंटे तक हरे कृष्ण। हमारा तो कई बार होता है वंश कल्प हरि बोल, ऑफकोर्स वो भी जरूरी है क्योंकि प्रैक्टिकल सेवा होती है, लेकिन वैष्णव में कितना गाढ़ा प्रेम होता है। नरोत्तम, श्यामानंद, श्रीनिवास, अलग अलग गुरु के डिसाइपल्स हैं, लेकिन उनका आपस में कितना प्रेम है। हमारे अंदर शायद उतना प्रेम नहीं भी हो, एटलीस्ट एक बूंद भी आ जाए, भगवान से प्रार्थना कर सकते कि वैष्णव के प्रति प्रेम है, वही भगवत प्रेम का लक्षण है। अगर हम वैष्णव से प्रेम नहीं कर रहे इसका मतलब भगवत प्रेम तो बहुत दूर की बात है। जिनके साथ हम बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, पहले उनसे प्रेम करना है, फिर हम भगवान से प्रेम कर सकते। तो आसपास के लोग देख रहे थे क्या हो रहा है, ये इतने बड़े राजा गवर्नर और इनके आंखों में आंसू आ रहे हैं, शरीर में कंपन हो रहा है, और ये इतने धीर सन्यासी गंभीर, और आज ये भी साधारण व्यक्ति की तरह रो रहे हैं, ये क्या हो क्या रहे? ये सन्यासी का स्पर्श करके ये गवर्नर पागल हो गए हैं। तब चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, क्योंकि कभी भी भक्त ये प्रेम के लक्षण है सबके सामने नहीं दिखाते। श्रील प्रभुपाद तो महाभागवत भक्त हैं, प्रेम के सबसे ऊंचे स्तर पर हैं, लेकिन कभी प्रभुपाद किसी के सामने दिखाते नहीं थे। कभी कभी हो जाता, जैसे एक बार गोरखपुर में श्रील प्रभुपाद ये भजन गा रहे थे, कौन सा भजन, जय राधा माधव, और गाते गाते वो भाव विवल हो गए और फिर वो बस कुछ बोल नहीं सके। इस भजन में सब कुछ है, गोवर्धन, यमुना, कृष्ण, जस्ट चैंट हरे कृष्ण। और अमेरिका में अटलांटा में प्रभुपाद जी गा रहे थे परम करुण पहु दुई जन, और फिर बोलते बोलते प्रभुपाद भाव विवल हो गए, लॉर्ड चैतन्य सो मर्सिफुल, इतने दयालु। तो ये प्रेम के लक्षण है, वो एक बड़ी अमानत है जो हृदय में रखना है। अगर अगर चैतन्य महाप्रभु और प्रभुपाद सबको ऐसे लक्षण कॉमनली दिखाते तो लोग नकल करने लगते। जैसे चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक घटना हुई ऐसे, एक बड़े भक्त हरिदास ठाकुर एक बार कीर्तन सुन रहे थे। एक कोई व्यक्ति, एक स्नेक चार्मर, एक जो सपेरिया होता है, गारुड़ी बोलते हैं मराठी में, जो से बजाते हैं, वो बजा रहे थे और गीत गा रहे थे, कृष्ण कालिया नाक पे नृत्य कर रहे और हरिदास ठाकुर वहां से गुजर रहे थे। देखकर वो रुक गए, फिर वो नृत्य करने लगे, उनके आंखों में आंसू आए, वो जमीन पे लौटने लगे, छलांग लगाने लगे, तो सब वैष्णव बड़े आदर से उसका उनका सम्मान कर रहे। जब हरिदास ठाकुर चले गए तो एक नकली ब्राह्मण थे, वैसे अरे ये तो बहुत अच्छा है, ऐसा करने से मुझे भी आदर मिलेगा, वो भी बिल्कुल छलांग लगाए, नीचे गिरे और वो स्नेक चार्मर निकले, बट बिट 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 से जोर से मारने लगे, बेचारा जान बची लाखों पाए। बाकी सब लोग पूछने लगे, अरे ये यू आर डूइंग इनजस्टिस, आप अन्याय कर रहे हो, एक भक्त नृत्य कर रहे थे और आप बड़े आदर से उनको प्रणाम कर रहे हो और दूसरे भक्त नित्य, एग्जाम्पल बता रहा हूं, दूसरे भक्त नित्य कर रहे थे वैसा ही स्टाइल बिल्कुल, यू नो जेरोक्स, और आप उसको मारने लगे, क्या कारण है? तब वो भक्त जो स्नेक चार्मर जो गारुड़ी जो बोल रहे थे, इतने खुश हो गए, आज मुझे इतनी खुशी है, आपने ऐसा प्रश्न पूछा जिससे मुझे हरिदास ठाकुर के बारे में बोलने के लिए अवसर मिला। भगवान के भक्तों के बारे में बोलने का अवसर मिलना भी बड़ा सौभाग्य होता है, उनका गुणगान करना। स्वयं महाप्रभु जब हरिदास ठाकुर के बारे में बोलते तो ऐसा बोलते ऐसे पांच मुंह हो या हजारों मुंह, जैसे कई बार कोई गुलाब जामुन टेस्टी है लगता है कि हजारों मुंह होने चाहिए थे, हजार मुंह होंगे तो 2000 हाथ होंगे, है ना, तो एक एक लाइन में हर एक दो हाथ में एक एक गुलाब जामुन होगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। रूप गोस्वामी बोलते हैं कि जब मैं दो अक्षर बोलता हूँ कृष्णा, आज लग रहा है सब लोग बहुत थके हुए हैं, क्या बात है, अभी तो मैराथन के लिए बाहर जाने, हमें जोर से बोलिए कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जब मैं दो अक्षर बोलता हूँ कृष्णा तो मेरी इच्छा होती कि मेरे पास लाखों लाखों जीवा हो, जब ये नाम मेरे कानों में जाता है कृष्णा तो मेरी इच्छा होती कि लाखों कान हो। ऐसे मैराथन में सोचना चाहिए कि ये दो हाथ के मेरे पास 2000 हाथ होने चाहिए, है ना, एक एक दस एक 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 हाथ से एक एक भगवद गीता, एक से चैतन्य चरितामृत, एक से नेक्टर ऑफ डिवोशन, प्रभुपाद जी की पुस्तक हजारों हाथ से बांधे और हजारों जीवों को कृष्ण भक्ति मिले। एक्चुअली पुस्तक वितरण जो है ये दिव्य क्रिया है, ये कोई मटेरियल बिजनेस नहीं है, क्योंकि जो भी व्यक्ति पुस्तक को पढ़ता है या देखता भी है, स्पर्श भी करता है, तो भी उसका जीवन सफल हो जाता है। मुझे याद है अमेरिका में पुस्तक वितरण करते थे तो कई बार अमेरिका में तो बहुत मुश्किल होता है, तो कई बार लोग नहीं देखना चाहते, हम खाली उसको ऐसे पास में जाके उसको ऐसे जस्ट टच करा देते, आप देखिए तो सही, तो जस्ट टच भी कर देता, स्पर्श भी कर देता, तो भी थोड़ा लाभ हो रहा है। तो मैं बतला रहा था कि यहाँ पर रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु ये प्रेम के लक्षण प्रकट कर रहे हैं। रामानंद राय अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं बहुत शूद्र हूं, मैं अधम हूं, और फिर मैं हरिदास ठाकुर की कहानी बता रहा था, हरिदास ठाकुर नृत्य कर रहे हैं और उनका बड़ा आदर किया जा रहा है, नकली ब्राह्मण नृत्य कर उनको पीटा जा रहा है, उसे पूछा गया आप अन्याय क्यों कर रहे, तो उसने कहा कि मुझे खुशी हो रही है क्योंकि आपने मुझे हरिदास ठाकुर के बारे में प्रश्न पूछे। और जब वो बोलने लगे तो उनके मुंह में मतलब उनके शरीर में वासुकी सर्प ने प्रवेश किया, उनकी आत्मा ने, मतलब लाइक पजेस्ड बाय वासुकी स्नेक, वासुकी बोलने लगे, ये सांपों के राजा हैं, वो बोलने लगे कि हरिदास ठाकुर इतने महान भक्त हैं कि ब्रह्मा और शिव भी उनका संग करना चाहते, हरिदास ठाकुर इतने महान है कि गंगा माता भी इच्छा करती है कि कब हरिदास ठाकुर मेरे जल में आके स्नान करेंगे। हरिदास हमेशा वैष्णव का गुणगान करते हैं, कभी निंदा नहीं करते, इसीलिए उनका नाम हरिदास है। और जो व्यक्ति एक बार भी हरिदास ठाकुर का नाम भी लेता है उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जय जय हरिदास।
और जोर से लेता है तो गोलोक की प्राप्ति होती है। जय जय हरिदास। ये पुस्तक में नहीं लिखा है, ये मैंने एडिटिंग किया था। मैं क्षमा चाहता हूं। ये भी भक्तों का जय जयकार करना जोर से ही करना चाहिए। नहीं, मान लो आपको प्राइज मिल रहा है बुक डिस्ट्रीब्यूशन में और कोई बोलता है रेवती पति प्रभु की, इतना धीरे बोलोगे तो प्रभु जी अगली बार डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं करे। जोर से बना रेवती पति प्रभु की। अब मेरा लेक्चर सफल हो गया। एक वैष्णव का गुणगान किया जो हरिदास की परंपरा में ही। हमेशा वैष्णव का भगवान का गुणगान जोर से करना चाहिए, इनकरेज करने के लिए, एक दूसरे को इंस्पायर करने के लिए। ऑफकोर्स हमें अपने आप की जय के लिए खुशी नहीं होनी चाहिए, ये नहीं, लेकिन दूसरों के वैष्णव जितना ज्यादा मेरे अंदर इच्छा है कि मैं मेरा गुणगान हो, लोग मेरी स्तुति करें कि मेरा लेक्चर बहुत अच्छा है, मेरा डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, मैं बहुत शुद्ध भक्त हूँ, इसका मतलब अभी मैं अशुद्ध हूँ। और जितना हमें लगता है कि दूसरे वैष्णव का जय होना चाहिए, दूसरे वैष्णव को गुणगान होना चाहिए, उनके उनको माला मिलनी चाहिए, उनको प्रसिद्धि मिलनी चाहिए, इसका मतलब मैं भक्ति में आगे बढ़ रहा हूँ। ये भक्ति जो है मटेरियल वर्ल्ड के बिल्कुल अपोजिट है। जैसे मैं कल यहाँ पर एक हमारे अजय गोयल प्रभु जी हैं, बहुत अच्छी सेवा करते हैं बुक स्टॉल में, तो उनके घर में मेरा एक कार्यक्रम था और वहाँ कुर्सी एक ही थी या दो ही थे और एक ही कुर्सी खाली थी, तो दो भक्त थे, एक बोले थे आप बैठो, उससे बोले दूसरे बैठो, है ना, दोनों में स्पर्धा हो रही है किसको कुर्सी मिले, दूसरे को मिलनी चाहिए। मटेरियल वर्ल्ड में क्या देखते हैं, कुर्सी के लिए क्या होता है देखते हैं आप, है ना, तीन पार्टी एक पार्टी हो जाते हैं, फिर आपस में झगड़े कुर्सी फेंकते हैं एक दूसरे पर। ये थोड़ा थोड़ा मजा मुझे पता है। तो वी शुड फील ऑनर, गिव पोजिशन ऑनर टू अदर्स। अमानीना मान देना, चैतन्य महाप्रभु बोलते थे खाली अमानीना, उन्होंने खाली अमानीना नहीं बोला, अमानीना मान देना। एक है अमानीना, ठीक है मुझे सम्मान नहीं मिले, लेकिन मुझे प्रयास करना चाहिए दूसरों का गुणगान करने, क्योंकि उससे हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती। तो हरिदास ठाकुर का गुणगान करने लगे और फिर वो बोले ये ब्राह्मण ये नकली, ये तो दिखावा करने के लिए नृत्य कर रहा था, इसीलिए मैंने उसको मार के भगा दिया। और यहां पर हम देख रहे हैं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय दोनों अलग हो गए और सर चैतन्य महाप्रभु बोले हम बाद में मिलेंगे, सर्व भट्टाचार्य ने मुझे बताया था कि आप बहुत महान वैष्णव हैं और मुझे बोला था कि मैं आपसे मिलूं, मैं आपसे मिलने आया और बिना प्रयास के आपके दर्शन हो गए, मुझे बहुत खुशी है। रामानंद राय ने जब ये सुना तो वो ये नहीं बोले कि अच्छा हुआ सर्व भट्टाचार्य ने ठीक बोला, वेरी गुड, आपने सही है, आफ्टर ऑल सूर्य कब तक छिपा रहेगा। रामानंद राय का क्या रिस्पांस था, रामानंद राय बोले कि सार्व भट्टाचार्य का मैं सेवक हूं, आई एम अ सर्वेंट ऑफ सार्व भट्टाचार्य, और सेवक के ऊपर वो कृपा प्रदान कर रहे हैं और वो हमेशा मेरे कल्याण के लिए सोच रहे हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे आपको बोला मेरे से मिलने के लिए, आज मेरा मनुष्य जीवन सफल हो गया, मैं तो अछूत हूं, मैं शूद्र हूं, फिर भी आपने मुझे गले लगाया। सिर्फ भगवान नारायण ही ऐसा कर सकते हैं, जो सारे नियमों के विरुद्ध जाकर मुझे स्पर्श किया आपने। मैं एक सरकारी नौकर हूं जो हमेशा धन और भौतिक चीजों में रुचि रखता हूं और आप इतने महान सन्यासी हैं जो राधा कृष्ण के प्रेम के सागर में डुबकी लगा रहे हैं और फिर भी आपने मेरे पर दया की, आज से पता चलता है कि आप साक्षात ईश्वर हो। साधु पुरुष का स्वभाव है कि लोगों के घर घर जाकर कृपा करते हैं, इसमें उनका स्वयं का कोई निज स्वार्थ नहीं होता, वो दूसरों के कल्याण के लिए ऐसा करते हैं। मैं देख रहा हूं मेरे साथ करीब 1000 व्यक्ति हैं और आपका दर्शन करने से सब लोग गा रहे हैं कृष्ण कृष्ण राम राम, राम हरि हरि, थोड़ी देर तक बोलिए हरि 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 हरि, आपके संग के प्रभाव से सब लोग कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं, मेरे को ऐसे लगता है कि आप स्वयं भगवान हो, भगवान ही है ऐसे सबको कृष्ण प्रेम दे सकते हैं। रामानंद राय बोल रहे हैं, करेक्ट बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में। श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या जवाब दिया, वो ये नहीं बोले मैं भगवान हूं, अच्छा है सब ग्रुप में डाल दो। मेरी प्रसिद्धि सब जगह, सब सब फेसबुक टेल बुक सब जगह पे डाल दो। महाप्रभु क्या बोले, महाप्रभु बोले आमी मायावादी सन्यासी, आमी कृष्ण भक्ति नहीं जानी, मैं तो मायावादी सन्यासी हूं। हाँ, ये तो सब लोग जो डिवोटी बने हैं ना वो आपके कारण बने, रामानंद तुम्ही भागवत उत्तम, आप बड़े भागवत हो, तुम्हारे दर्शने सबारा मन द्रवित है, तुम्हारे दर्शन है, आपके दर्शन से सबका मन पिघल गया है और आपके दर्शन से सब लोग हरि नाम ले रहे हैं। मेरा मन इतना कठोर है, सारंग भट्टाचार्य जानते हैं मैं कितना हार्ड हार्टेड हूं, इसीलिए उन्होंने बोला कि आपसे मिलूं जिससे मेरा मन पिघल जाए। मतलब ये हम देखते हैं कैसे वैष्णव, चेतनामृत वैष्णव नहीं भगवान है लेकिन एक रोल खेल रहे हैं वैष्णव का, कैसे वैष्णव एक दूसरे का गुणगान करते हैं। हम देखते हैं जैसे कई फेस्टिवल्स होते हैं, बहुत साल पहले यहाँ पूना फेस्टिवल होता था जिसमें बहुत सारे प्रभुपाद के शिष्य आते, सब एक दूसरे का गुणगान करते। ये जो भाव है हमें प्रभुपाद के शिष्यों से, प्रभुपाद से सीखना है और चैतन्य महाप्रभु से, हाउ टू ग्लोरीफाई एंड ऑनर ईच अदर। इतने में एक वैष्णव ब्राह्मण आए, वो बोले कि आप मेरे घर आइए प्रसाद के लिए। महाप्रभु सन्यासी थे, वो कभी प्लान नहीं करते थे कि कहाँ से प्रसाद आएगा, बस कोई बुला लेता है चलो आओ प्रसाद के लिए, इसको बोलते हैं बस भिक्षुक वृत्ति, कुछ कुछ मांगना भी नहीं, मिल जाए तो आसानी से ले लेना। फिर स्नान प्रसाद लेने के बाद शाम को फिर दोनों एक साथ मिले और दोनों चर्चा करने लगे। मैं फिर शुरुआत करूंगा, कुछ 5-10 मिनट बचे हैं, और चर्चा आपस में क्या हुई ये हम नीचे भक्ति वेदांता हॉल में ब्रेकफास्ट के बाद, प्रसाद के बाद 10 बजे से चर्चा करेंगे। ये बहुत गुह्य विषय है, मैं तो इसके योग्य नहीं हूं, लेकिन इसमें से खाली जो सरल भाग हैं, जो मेरे जैसे बद्ध जीव को थोड़ा थोड़ा सा 0.01% समझ में आ रहा है, उसके पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। जैसे कोई कोई एक केजी स्टूडेंट है, वो सोचता है कि मैं PhD के बुक्स पढ़ूं, इसके अंदर योग्यता नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी ने आदेश दिया तो प्रभुपाद जी ने अनुवाद किया, उसका भी बहुत सरल भाग जो आसान भाग है उस पर हम थोड़ी चर्चा अभी करेंगे और बाद में 10 बजे के बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। कितने भक्तों ने यह विषय पहले सुना है चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय का? अच्छा, बहुत कम ने सुना है, तो हम उसको बहुत बेसिक लेवल पर लगेंगे। चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से बोले कि मुझे एक श्लोक सुनाओ शास्त्रों के आधार पर कि जीवन का लक्ष्य क्या है और कैसे प्राप्त करना है, जीवन के लक्ष्य के बारे में एक बताओ, हाउ टू अटेन द गोल ऑफ लाइफ। अब रामानंद राय डायरेक्टली बोल सकते थे कृष्ण नाम कीर्तन करो, कथा सुनो भागवत में जागते हुए, और फिर जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, ये अंतिम अंतिम कंक्लूजन यही है। लेकिन रामानंद राय ऐसा जवाब नहीं दे रहे, क्यों सीधे नहीं बोल रहे डायरेक्टली श्रवणम कीर्तनम विष्णु, क्योंकि वो बता रहे हैं कि कैसे अलग अलग स्तर हैं भक्ति के। हमारा उद्देश्य है शुद्ध भक्ति पे पहुंचना, उसके पहले और भी क्या चीजें हैं वो वर्णन किया गया। भक्ति शुद्ध भक्ति है अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। शुद्ध भक्ति का मतलब उसमें ज्ञान और कर्म का मिश्रण नहीं होना। जैसे आप खीर खा रहे हैं तो इतना टेस्टी है, तो बादाम किशमिश, लेकिन थोड़े कंकड़ और मिट्टी आ जाए तो वो अच्छा नहीं लगेगा। ऐसी शुद्ध भक्ति है वो कंकड़ यानी ज्ञान और मिट्टी यानी कर्म इससे मुक्त रहना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु एक बार जब भक्तों के साथ आम घाट में गए, अब में से कितने भक्तों ने कहानी सुनी है आम घाट की, चैतन्य महाप्रभु गोद्रम द्वीप में एक स्थान है, वहां सारे भक्त गए और कीर्तन करते हुए जाए और दोपहर का समय हो गया और प्रसाद नहीं था, शायद कूपन लेना भूल गए थे समथिंग लाइक दैट, प्रसाद था ही नहीं, भक्तों में बहुत भूख लगी थी। तो महाप्रभु ने क्या किया, सिंपल से ऐसे छोटा सा एक बीज लिया आम का और जमीन के अंदर डाला, कुछ ही क्षणों में एक वृक्ष प्रकट हुआ। हमारे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट सब बिल्डर हो जाएंगे, कैसे हो सकता है, नहीं क्योंकि भक्ति जो है साइंस से परे है, वो एक दिव्य साइंस। कुछ ही क्षणों में एक पेड़ प्रकट हुआ और पत्तियां आने लगे और हरे भरे पत्तियों के साथ फल लगने लगे और फल पके हुए फल आम, और हर एक भक्त को एक डिवोटी ऊपर चढ़ के हर एक भक्त को फल दिए, 200 फल थे, बड़े बड़े फल। जनरली आम खाना आम बात है, आम सब लोग खाते हैं, लेकिन ये आम की विशेषता थी। ये क्या विशेषता थी, अच्युत केशव प्रभु का फेवरेट स्टोरी है, व्हाट वाज द स्पेशलिटी, हाँ गुठली भी नहीं और छिलका भी नहीं, सीडलेस स्किनलेस मैंगोस। आजकल सीडलेस डेट्स आते हैं, लेकिन वो क्या होता है, डेट उगते है उसमें बीज होती है और फिर वो निकाला जाता है, लेकिन ये बहुत अलग ही थे, इसमें बीज था ही नहीं और छिलके थे ही नहीं। इमेजिन कैसे कितना बढ़िया लगेगा, नहीं ऐसे आप आम है, इवन प्रवचन में भी खा सकते थे। सीडलेस स्किनलेस मैंगोस, बाकी जगह अगर सीडलेस स्किन वाले आप खाओगे तो पता चले कोई कहीं ना कहीं छिलका फेंकना पड़ेगा, नहीं ये मैंगोस आप कहीं भी खाते हैं रसगुल्ला की तरह, ये सुनने से आपका मुंह इतना खिल गया है तो खाने में कैसे। यस, और कोई सीनियर डिवोटी उसको दो दो भी मिलते होंगे जी। इसका एक तात्पर्य है जो मैंने सुना है वैष्णव से, चैतन्य महाप्रभु हैज कम टू गिव अस भक्ति, प्योर भक्ति, शुद्ध भक्ति, लेकिन कैसी भक्ति, उसमें कोई कर्म नहीं, ज्ञान नहीं, कोई सीड नहीं, स्किन नहीं, प्योर भक्ति। देखिए इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने ब्रज प्रेम बांटा, इसके बाद अगला कलयुग आएगा कितने साल के बाद, 432,000 साल कलयुग के, उसके बाद 800,000 सत्यु के, 43 साल, 43 लाख साल के बाद, नहीं अप्रोक्सीमेटली, लेकिन उस समय चैतन्य महाप्रभु नहीं आएंगे, एक युग अवतार आएंगे और व्रज प्रेम नहीं देंगे। ये व्रज प्रेम बहुत दुर्लभ है, वो व्रज प्रेम मतलब वैकुंठ से भी परे, अयोध्या से भी परे है, और वो भगवान फ्री में दे रहे हैं। तो इसलिए हमें बहुत कृतज्ञ होना चाहिए श्रील प्रभुपाद के प्रति, जो हमें चैतन्य महाप्रभु की कृपा कृष्ण प्रेम दे रहे, लेकिन हम उसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, हर एक मंत्र ध्यान पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि मन भागता है, सबका मन भागता है। आप में से कोई है जिसका मन नहीं, जिसका मन भागता है जप में, मन इधर विचलित होता है, हाथ ऊपर करें, जिन हाथ ऊपर नहीं किया उनको पता ही नहीं चलता कितना भागता है। या कुछ एक्सेप्शन है प्योर डिवोटीज, तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं चैंट विद सम सिंसियर डिवोटी, मेरा मन बहुत बार भागता है, तो आज रेवतीपति प्रभु जी के पास बैठ के जप किया है ना, प्रभु जी एकदम केयरफुली अटेंटिवली, वी शुड ट्राई टू चैंट विद डीप अटेंशन, और तुलसी के सामने जप करना, और प्रार्थना, जप शुरू करने से पहले एक प्रार्थना है, आपको याद है पिछली बार मैंने बताया था एक प्रार्थना, क्या प्रार्थना, अरे सब याद है, आई थिंक आप कलयुग के नहीं हो, कुछ दूसरे युग से लोग मंद सुमंद नहीं है। प्लीज रिपीट द प्रेयर जो प्रभु जी ने बताया, कृपा करी नाम रूपे मोर जिवाया, निरंतर नाच प्रभु धरी तव पाया, कृपा करके नाम रूप में मेरी जीवा पर नित्य करो। समय हो रहा है, मैं सिर्फ 5 मिनट एक्सटेंड कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ भक्त निगड़ी से अभी अभी आए प्रवचन सुनने के लिए, उनका कार फेल हो गया था रास्ते में, पता नहीं हो सकता है। तो 5 मिनट खाली इसके बारे में बोलूंगा। ये जो रामानंद राय पहला प्रश्न चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं, जीवन का लक्ष्य क्या है, तो रामानंद राय बोलते हैं वर्णाश्रम के ड्यूटीज करो, आप ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, जो आपको बताया गया वो करो, ब्राह्मण क्षत्रिय आपके ड्यूटीज हैं वो करो, वैश्य हो तो बिजनेस करो, क्षत्रिय हो तो राज्य करो या लड़ाई करो, ब्राह्मण हो तो ज्ञान प्रदान करो, शूद्र है तो दूसरों की सेवा करो, परफेक्शन। महाप्रभु बोले प्रभु कहे एहो बाह्य आगे कह आर, इसका मतलब प्रभु बोले कि इससे ज्यादा आगे कुछ बोलो। तब रामानंद राय ने अगला श्लोक बोला, कृष्ण कर्म अर्पणम, सब कुछ कृष्ण को अर्पण कर दो। गीता में कौन सा श्लोक है जो बताता है सब कुछ कृष्ण को अर्पण करना है, यत करोषि यदश्नोषि यज्ञोषि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय, जो कुछ भी खाते हैं, तपस्या करते हैं, दान देते हैं, सब कृष्ण के लिए। तो प्रभु क्या बोले, प्रभु कहे, क्या आएगा इसके बाद, प्रभु कहे एहो बाय आगे कह आर, श्री राम प्रभु बोले, इसलिए मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, आगे कह आर। तब चैतन्य महाप्रभु ने पूछा आगे, इसके आगे और बोलो, अभी यत करोषि के आगे नेक्स्ट क्या बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु, स्वधर्म त्याग। गीता में कौन सा श्लोक है, सब सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम, सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, ये तो लगता है हाईएस्ट है, सबसे ऊंचा है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या बोले, प्रभु कहे एहो भाई आगे कह हर। तो रामानंद राय ने इसके बाद नेक्स्ट बोला ज्ञान मिश्रित भक्ति। ज्ञान मिश्रित भक्ति क्या है, भक्ति और थोड़ा ज्ञान का भी टिंज है उसमें, स्पर्श है। वो कौन सा श्लोक है गीता का, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समसर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते परम। हम इस पर डिटेल में 10 बजे चर्चा करेंगे, मैं सिर्फ खाली श्लोक पढ़ रहा हूं। मतलब ब्रह्मभूत स्तर पे जो है वो शोक नहीं करता, अभिलाषा नहीं करता, ऐसे व्यक्ति को मेरी भक्ति मिलती है। प्रभु कहे एहो भाई आगे कहा हर, महाप्रभु बोले इसके आगे क्या है, ज्ञान शून्य कर्म शून्य ज्ञान शून्य फ्री फ्रॉम कर्म एंड ज्ञान फ्रूटिव एक्शन एंड स्पेकुलेशन, वो कौन सी भक्ति है, शुद्ध भक्ति। और वो कौन सा श्लोक है, ज्ञाने प्रयास उदपास्य नमंत एव सन्मुखारितम सॉरी जीवंति सन्मुखारितम भवदीय वार्ता स्थाने स्थिता श्रुतिगतान तनुवान मनोभीर ये प्रयास जीत जीतो पीतस्त्रलोक्यम। ये श्लोक को भगवान ने स्वीकार किया। इसका क्या अनुवाद है, ज्ञाने प्रयास उदपास्य, ज्ञान के प्रयास को त्याग दो। यानी यहां ज्ञान का मतलब क्या है, जो मेंटल स्पेक्युलेशन जो तर्क वितर्क से युक्त, इसको त्याग दो और सन्मुखारितम सत भक्तों के मुख से हरि कथा सुनो और ये बुरे जो हैबिट्स है ना मांस खाना शराब पीना इनको त्याग दो और भगवान के नाम रूप गुण लीला का श्रवण करो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ लिखा है ये प्रयास अजीत जीतोपी। भगवान का एक नाम है अजीत, अजीत का मतलब क्या है, इसको कोई पराजित नहीं कर सकता, लेकिन वो भगवान जीत लिए जाते हैं, पराजित हो जाते हैं किसके द्वारा, जो उनकी कथाओं को ध्यान से सुनते हैं। इसका कंक्लूजन ये है, चैतन्य महाप्रभु इस पे बोलते हैं एहो है, ये ठीक है लेकिन आगे कहा और भी बोलिए। कंक्लूजन क्या है कि अपने अपने वर्ण और आश्रम में रहना तो अच्छा है, वो जरूरी है, लेकिन सिर्फ वर्ण आश्रम में रहने से प्रगति नहीं होगी। नहीं, जैसे कोई बोलता है प्रभु जी आपको बीमारी दूर करनी है तो क्या करो, एक अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, भयानक बीमारी है, किसी को कैंसर हो गया, मलेरिया डेंगू हो गया, लेकिन फिर हॉस्पिटल में रह के दवाई लेनी चाहिए। कोई बोले हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, कैंटीन अच्छा है, लेकिन दवाई नहीं ली तो ठीक नहीं होंगे। ऐसे भक्तों के संग में रहकर कृष्ण कथा सुनना, मत चिता मत गता प्राणा, मेरे बारे में चर्चा करना, सताम प्रसंगात मम वीर संविद भवंती रत सायनो कथा, भगवान के भक्तों में संग में आना और हरि कथा का श्रवण कर। और इसी उद्देश्य से हम पुस्तक वितरण कर रहे हैं कि न केवल हम हरि कथा सुन सके, जो पढ़ रहे वो भी हरि कथा है, पुस्तक पढ़ना भी हरि कथा पढ़ने के बराबर है, क्योंकि पुस्तक जिसने लिखी है वो व्यक्ति भागवत व्यासदेव ने लिखी है और प्रभुपाद ने अनुवाद किया है, जो उसको पढ़ेंगे उसको भी हरि कथा सुनने का फल मिलेगा। और सब शास्त्रों का कंक्लूजन है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणश्यति, भगवान का नाम संकीर्तन है सारे पापों को दूर करने वाले। हरेर नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्त्येव नास्त्ये। इस कलयुग में भगवान के प्राप्ति के लिए और कोई उपाय नहीं है सिवाय हरि के नाम के, सिवाय हरि के नाम के हरि के, और श्रद्धा से नाम लेना। आज सुबह हम सच्चिदानंद महाराज की किताब से पढ़ रहे थे भजन रहस्य से, वो जगदानंद पंडित का बताते हैं कि कैसे भक्ति के बहुत सारे आइटम्स हैं, 64 आइटम है, हमारे पास समय नहीं है सब करने का, लेकिन हरि नाम पे ध्यान फोकस रखो। तारमदे सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, सब भक्ति में सब आइटम में सर्वश्रेष्ठ है भगवान का नाम लेना, सिंसियरली सच्चे दिल से, जैसे एक छोटा बच्चा माँ को पुकारता है उस भावना से भगवान के नाम को पुकारना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 10 बजे कंटिन्यू करेंगे और थोड़ा जोर से बोलिए एक बार हरि नाम को, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय। कोई कमेंट्स या प्रश्न, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की।